शांति, ओम शांति। हम सब किसके पास आए हैं? लोग पूछते हैं ना, आप वहां माउंट आबू में जाते हो, किसके पास जाते हो? तो जब कोई ऐसे पूछे तो बाबा कहते हैं, उनको कहो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, हम बाप दादा के पास जाते हैं। अब जब वो सुनेंगे बाप दादा तो हैरान होंगे, ये बाप दादा क्या है? तो ब्रह्मा कुमारीज का ये कोड वर्ड है ना, बाप दादा। इनको कौन समझ सकते हैं? केवल हम बच्चे ही समझ सकते हैं, बाप कौन दादा कौन। और कैसे वो बाप दादा के तन द्वारा हमें पढ़ाते हैं, ये मुरली क्या है? वो बाप परम पिता परमात्मा ब्रह्मा दादा के द्वारा हमें ज्ञान तो दे रहे हैं, साथ साथ योग भी सिखा रहे हैं कि कैसे मुझे याद करो। तो किसके पास हम सब आए हैं? क्या जवाब देंगे? बाप दादा के पास। दूसरा, बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूं। उस दिन बाबा ने कहा ना, मैं ही गरीब निवास हूं। श्री कृष्ण को गरीब निवास नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो स्वर्ग की दुनिया है, जहां वो रहता है वह गरीबों का उद्धार थोड़ी करने आता है। वहां तो सब धनवान है, कोई गरीब नहीं है जो गरीब निवास बने। इसलिए श्री कृष्ण गरीब निवास नहीं है, मैं हूं, शिव बाबा है। तो शिव बाबा गरीब निवास, इस समय जो भारत गरीब बन गया है, किसमें गरीब? धन में भी तो गरीब है ना, और देशों की कई एडवांस कंट्रीज की भेंट में तो कहेंगे अभी ये इतना एडवांस नहीं है, इतना डेवलप नहीं है, तो उनकी भेंट में तो गरीब है धन से भी। लेकिन बाबा कहते हैं कि चरित्र में गरीबी है, गुणों की गरीबी है, और सब बातों की गरीबी है, क्योंकि भेंट की जाती है उस सतयुग की भेंट में, अभी हम गरीब है। लेकिन बाबा जो एकदम सतयुग में इतना साहूकार था, अभी गरीब बना है, उनको फिर से साहूकार बनाते हैं, है ना। दुनिया दूसरे देश वाले न बहुत इतने अमीर बनते न गरीब बनते, केवल एक भारत ही है जो बहुत अमीर था फिर बहुत गरीब बन जाता है। तब बाबा कहते हैं मैं आता हूं। तो आज विशेष रूप से बाबा ने इन दो मुख्य बातों पर स्पष्टीकरण दिया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 9 फरवरी 2026 है। मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। इतने गरीब जो कौड़ी का भी मूल्य होता है उससे भी बदतर है, तो तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलेंगे तभी कौड़ी से हीरे समान बनेंगे, क्योंकि वो गरीब निवास बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। तो मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। कोई किसको बहुत ऊंचा बनाता है, बहुत श्रेष्ठ पद देता है, पर ये अगर कहता है कि अभी मैं जो कहता हूं वो तुम करो, तो फिर वो करेंगे तभी तो उनसे इतनी प्राप्ति होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है? उत्तर है बाप दादा का ये गुह्य राज उनको समझाना है। तुम जानते हो हम यहाँ बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा तन में है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है, दोनों इसमें हैं। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये दादा ब्रह्मा बाबा ये भगवान नहीं है, क्योंकि दादा माना बड़ा भाई, ये तो भाई है ना आत्मा रूप में, ये भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को, वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। अंतर बाबा समझाते हैं ब्रह्मा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा में, वो निराकार है और वो शांति धाम में रहने वाला है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। वैसे भी लौकिक में भी सब बाबा को दादा ही कहते थे, दादा लेखराज, दादा लेखराज, दादा माना बड़ा भाई, सिंध में बड़े भाई को दादा कहते हैं, बंगाल में अभी हम बंगाल गए थे वहां भी सब बड़े भाई को दादा ही कहते हैं, दादा बड़ा भाई। तो बाबा कहते हैं अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है, बाप से दादा का वर्षा मिलता है। अब यहाँ दादा हो गया ग्रैंडफादर, तो है दादा का वर्षा, ग्रैंडफादर का वर्षा है, परंतु मिलेगा तो बाप के द्वारा ही ना बच्चे को। पिता अगर है उसने कमाया है, वो बच्चे को दे न दे ये उसकी मर्जी, क्योंकि उसने कमाया है। लेकिन अगर ग्रैंडफादर का वर्षा है तो वो डायरेक्ट हकदार उसका पोता बन जाता है। तो इसीलिए बाप से दादा का वर्षा मिलता है, माना ग्रैंडफादर का वर्षा पिता से मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, ये हमारे ग्रैंडफादर का है ना, पूर्वजों का है, तो इसलिए हम इसके अधिकारी हैं। ये दादे का वर्षा है, वो है गरीब निवास। अब हमारा ग्रैंडफादर कौन है? गरीब निवास है। गरीब निवास उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाते हैं। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है, हम किसके पास आए हैं। देखने में तो साकार मनुष्य है, ब्रह्मा बाबा का साकार तन देखते हैं, तो ये देखने में तो साकार मनुष्य है। इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं, लोग हैरान होते हैं इनको ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण क्या करता है? श्राप देता है दुख का। बाप वर्षा देते हैं सुख का और फिर रावण श्राप देते हैं दुख का। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, किसको भी मिलता नहीं है। भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। ये भगवान से वायदा किया। हमारा तो एक शिव बाबा, तो तुम जानते हो ये बाप है गरीब निवास, गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाने वाला, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा को याद करते हैं तो ब्रह्मा बाबा भूल तो नहीं जाता ना, दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, दो हुई ना, एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा है। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो बहुकाल अलग रहे तो इसलिए बाबा स्वयं आकर के हमें मिलते हैं। तो पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, जो बहुत काल से बिछड़े हैं वही पहले नंबर में मिलते हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से मिलती है। कब मिलती है? इसी संगम युग पर परमात्मा बाप से मिलती है वो आत्माएं जो सबसे पहले बिछड़ी है। तो बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वो अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो, एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हैं। पवित्रता का ताज कोई रतन जड़ी ताज की तरह नहीं होता है वो आकार, वो लाइट का ताज पीछे दिखाते हैं सिर के। तो बाबा कहते हैं उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ी ताज, तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये हर एक को पता हो कि यहाँ किसके पास आए हैं, बाप दादा के पास। ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्मा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता ही नहीं है। कोई कहे आप इसको भगवान कहते हो तो बाबा कहते उनको को मनुष्य भगवान तो होता ही नहीं है, और फिर कहेंगे ये आपका गुरु है, हम कहते गुरु भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, तो फिर कौन है ये आपका? फिर हम क्या जवाब देते? ये हमारा अलौकिक पिता है। तो अलौकिक पिता है, भगवान या गुरु नहीं है। तो बाबा कहते हैं भगवान कहा जाता है निराकार को, वो बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं भी रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वान परस धाम कहा जाता है। परम धाम शांति धाम क्या है? वान परस धाम, आत्मा वाणी से परे उस धाम में रहती है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाने आना होता है, आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प फिर दुख का पाठ है। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते मैं आता हूँ। अब जब और दुख बढ़ना है तो उस समय बाबा नहीं आते, अभी तो दुख बढ़ना है, परंतु जब दुख का अंत होता है तब बाप को आना होता है, तब बाप कहते मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है, कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता है क्यों भगवान लास्ट में आते हैं, जब वो दुखी हो गए, शुरुआत हुई दुख की तब आना चाहिए ना। बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, मैं आता ही तब हूँ जब अति हो जाती है और दुख का अंत होना है तब आता हूँ, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में, हम सब क्यों आते हैं मधुबन में? बाप दादा के पास तो आते हैं लेकिन साथ साथ भट्ठी में आते हैं, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। हाँ देखो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ बाहर का और कुछ याद नहीं आना चाहिए, यहाँ है ही मात पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है ही नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको तो शूद्र ही कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं है तो जरूर है शूद्र है, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, अब हम स्वर्ग की राजधानी का मालिक नहीं है। क्यों नहीं है मालिक? क्योंकि अभी हम पतित हैं। अब पतित कैसे मालिक होंगे? हम पावन थे फिर 84 का चक्र लगाए सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। पहले पहले मिलते हैं, पहले पहले वही सतयुग में आते हैं, वही सबसे पहले फिर बिछड़ते भी हैं। सब हीरो एक्टर है ना, सब पहले पहले। तो बाबा कहते हैं पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, रचयिता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति पालना और विनाश होता है। सब बीज के सामने सब कुछ होता है ना, स्थापना पालना विनाश। तो बाबा कहते हैं ये बीज ही जानते हैं। अब बीज जानते, तुम अब जानते हो। हाँ, जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति पालना और विनाश होता है, ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। चलो अभी अरबपति खरबपति भी कोई हो चलो भारत में, लेकिन सतयुग की भेंट में तो फिर भी बाबा कह रहे गरीब है। कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे। अभी अरबपति के बच्चे को हीरो से तो नहीं खेलेंगे ना, डर ही लगता है कि हीरे लूटने ले कोई। तो वो तो हीरो से खेलते थे, या तो क्या गरीब बच्चे कैसे खेलते हैं, उनके पास पत्थर ही होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों से खेलते हैं। उनके पास वो गोटियां भी नहीं होगी, गरीब है तो पत्थर ही उनके लिए वो गोटियां बन जाएंगे जिससे खेलते हैं। तो वो तो हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, हे गरीब निवास बाबा आओ, हे गरीब निवास बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं, पूरे पतित, आधे पतित भी नहीं, पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। वो धर्म प्राय लोप हो गया है और अब वो अपने आप को अब हिंदू कहलाते हैं। अब क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, सबसे जास्ती जो धर्म, जिस धर्म की जनसंख्या है वो क्रिश्चियन है ना। पूरा पश्चिमी दुनिया और यूरोप, ये पूरा बाबा कहते हैं ये सब क्रिश्चियन है। तो इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था, कर्म भी श्रेष्ठ था तो धर्म भी श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। क्यों दुखी हो गए हम? क्योंकि पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, आलय माना रहने का स्थान। पर शिव बाबा तो सतयुग में रहते नहीं है, पर फिर भी शिवालय है तो दूसरा अर्थ भी हो जाता है शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वरसाद देता हूँ। ये बाप दादा है, इनको भूलो मत, दोनों इकट्ठे हैं, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि क्यों लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके, स्वर्ग में जाने से पहले मुक्ति धाम में जाना है, और पतित आत्मा तो वहाँ जा न सके जब तक पावन न बने। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। हाय बाबा याद दिला रहे हैं, मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको अब स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अगेन स्मृति, हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े थे, सतयुग की आदि में कितने होंगे, तो बाबा फिर से याद दिलाते हैं, अब तो बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं, आदि में 9 लाख ही होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ। तैयारी तो सब कर रहे हैं, बहुत पश्चिमी दुनिया वाले यही तैयारी कर रहे हैं विनाश की। कल्प पहले माफिक कितने बॉम्ब्स बनाते हैं, 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी, भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। हाँ बाबा याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी, भगवान ने आकर राजयोग सिखाए मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। विनाश होना माना सारे भंभोर को, सब अभी कांटों का जंगल बन गया है, इस भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो कैसे विनाश हो। आजकल बॉम्ब्स में भी आग भी भरते हैं, है ना, ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो जैसे ही वो धरती पर गिरा तुरंत आग लग जाती है, तो बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होगी, हर मुरली में बाबा विनाश भी याद दिलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मूसलाधार बरसात, जैसे मूसल गिरते हैं ना वो मिसाइल, वैसे बारिश भी उस मूसलों की तरह ही गिरेगी। तो मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होंगे, तभी तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। ये है सतयुग, ये है संगम युग। अभी जब की विनाश और स्थापना का कार्य होना, बाबा कहते ये संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं। हाँ तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्यों क्यों उस राम का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ राम का नाम क्यों नहीं आया, गीता में कृष्ण का ही नाम लेते हैं, श्री नारायण का भी नाम नहीं लेते हैं, केवल कृष्ण का ही नाम ले लिया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, बहुत सुंदर है, सबसे प्यारा बच्चा। तो जिस समय गीता लिखी गई होगी उस समय श्री कृष्ण की भक्ति बहुत होगी, शिव बाबा की भक्ति के बाद, तो फिर इसलिए श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि बहुत सुंदर प्यारा बच्चा है। सबसे प्यारा बच्चा मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि क्या नहीं पता है, प्यारा बच्चा तो है लेकिन और क्या नहीं पता कि श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। अब ये भी एक बहुत बड़ा राज है, वो तो दिखाते कि वो भी वृंदावन की थी और आपस में मिलते थे, अब कहाँ श्री कृष्ण अलग राज्य का और राधे अलग राज्य की होगी। राधे अलग राजधानी की थी, भारत सिरताज था। बाबा याद दिला रहे हैं सब, भारत सिरताज था, अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। यहाँ सब सब स्मृति दिला रहे हैं, फिर क्या, फिर वही भविष्य में फिर वही होगा, तो वो भी स्मृति दिला रहे हैं। भविष्य की भी स्मृति है तो ये पास की भी स्मृति है। तो डबल सिरताज बनेंगे, सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं, अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है, जब दोनों ताज नहीं है, हाँ तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं हूँ पतित पावन, और मैं ही हूँ पतित पावन, मैं हूँ, मैं ही हूँ हाँ पतित पावन, और कोई पतित पावन हो ही नहीं सकता, मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है, सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है ना, जितनी जितनी खाद पड़ती जाएगी उतनी सोने की कैरेट कैरेट जो उनकी पवित्रता है वो कम होती जाती है। तो बाबा कहते सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के, भारत सब भगवान को, भगत सब भगवान को याद करते हैं, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो ज्ञान सूर्य बाप ज्ञान ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिन दिन तो बाप ज्ञान सूर्य आकर के दिन बनाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। क्या नहीं, ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, कितने भी शास्त्र आधा कल्प पढ़े दिन कहाँ हुआ, परंतु बाप जो ज्ञान सागर है ज्ञान का सूर्य है वो जब आते हैं तब दिन होता है। तो ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वो है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है, वो आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले, हाँ बाबा कहते हैं तुम भी योग योगेश्वर हो, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले तुम भी योग योगेश्वर हो, फिर तुम बनते हो योग योगेश्वर से, फिर क्या बनते हैं हम, राज राजेश्वर राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो, जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके क्या करो, याद की यात्रा में रहना है। कैसे रहना है याद की यात्रा में? बाबा हमेशा मिसाल देते हैं, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी ये जो माशूक है, हम तो उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में, सारे भक्त जो है वो उस माशूक के ही तो आशिक है। तो ये सारे जो भी ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में, सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान, क्या कहते हैं, हे भगवान दुख हरो सुख दो, यहाँ तो न शांति है न सुख है। सतयुग में दोनों है, शांति भी है और सुख भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। कैसे बजाते हैं 84 का पाठ? पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ये है 84 का पाठ। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना, अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। हाँ, ऐसे नहीं कर्म करते समय बाबा भूल जाए, कर्म करते समय भी बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कर्म करते हुए ये भी याद रहे कि बाबा भी याद रहे, फिर जो स्वर का वर्षा बाबा देते वो भी याद रहे। बाप और वर्षे को याद करना है, याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो क्या होगा, याद से क्या होगा, उतना पवित्रता की लाइट आती जाएगी। जितना याद करेंगे उतना पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। तो बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। बाबा के लिए अलग टाइम निकालना, और वो भी अमृत वेले का टाइम बहुत मिलता है, तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छा मिलता है, जब तक जाता है टाइम, ये पुरुषार्थ करना है। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि भी करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो, सीधी बात बाबा कहते हैं, काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें क्या चाहिए, इतनी ऊंची पढ़ाई है इसमें क्या चाहिए? बाबा कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। दूध बहुत शुद्ध चीज है, सफेद चीज है, शुद्ध भी है और सफेद भी है, तो उसको रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। कैसे बनते हो सोने का बर्तन? याद करने से, याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, और सोने का बर्तन है तो याद उसमें टिकेगी, ज्ञान भी टिकेगा। याद भूलने से फिर बाबा कहते लोहे का बर्तन बन जाता है। याद भूल गई तो बाबा की याद न हुई तो वो बर्तन जो सोने का बनता बनता जा रहा है वो फिर लोहे का बन जाता है, फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, और याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है, अब इसमें कैसे बनेंगे सोने का बर्तन, इसमें पवित्रता है मुख्य। पवित्रता के बिना बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन न सके। इसमें पवित्रता है मुख्य, याद से ही पवित्र बनेंगे, और सृष्टि चक्र को याद करने से, बाप को याद करने से पवित्र बनेंगे, और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं तो 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, फिर से याद दिलाते बाबा 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? अगर एक जन्म आप पवित्र रहो तो क्या हुआ, 63 जन्म तो आप पवित्र भिखारी रहे ही हो। तो बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। हाँ बाबा कहते इतनी बहुत कमाई हो जाएगी, अगर एक जन्म पवित्र रहेंगे तो बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, कोई भी अमर नहीं इस संसार में आया, हर एक अपनी, बाबा की कई बार कहते हैं ना रिटर्न जर्नी की भी टिकट लेकर आया है। इसलिए जब भी कहीं जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं, चलो अभी आए तो हो, आज की डेट लिखी आए हो, पर जाना कब है वो भी डेट बताओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी है। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरातों की, हाँ बाबा कहते हैं हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। वहां के बच्चे कौड़ियों से नहीं खेलेंगे, पत्थरों से नहीं खेलेंगे, कंकड़ों से नहीं खेलेंगे, हीरों से खेलेंगे, हीरों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए ना। आप सोचो रास्ते में सब हीरे पड़े हो, का पत्थर कंकड़ पर, हाँ उसकी जगह हीरे हो तो कैसी चमक होगी, रास्ते ही कितने चमकते होंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना, श्री मत से ही तुम श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनना है, श्री मत से ही, श्री मत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो, अब बाप की श्री मत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, बस बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम क्या हो जाएंगे, तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है, आधा कल्प है सुख आधा कल्प है दुख, जब गंवाया सुख तो फिर दुख आ गया, तो आधा आधा है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ, अभी तुमको स्मृति आई है, अब तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है, बाप है ज्ञान का सागर। हाँ क्या रखना है बुद्धि में, चक्र भी याद रखना है, बाबा को भी याद रखना है, बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो, तो ऊंच से ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने से पहले क्या करो, विनाश होने से पहले बाप को याद करो और पवित्र बनो, बी होली बी योगी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हाँ, कितना बाबा ने याद पर जोर दिया। पहला, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, बाप से ही पवित्रता की लाइट आएगी। बाबा की लाइट पवित्रता से ही आएगी, नहीं तो आएगी पर दरवाजा जैसे बंद है तो लाइट कैसे आएगी सूरज की। तो दरवाजा खुला रहे ना, तो पवित्रता का दरवाजा है वो जरूरी खुला रहे। तो याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी और पवित्रता से ही फिर याद भी आएगी, दोनों का आपस में संबंध है। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, ड्रामा के रास को यथार्थ रीति समझना है। मुरली में ही बाबा सब रास समझाते हैं, ड्रामा के रास को यथार्थ रीति समझना है। बट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए, मधुबन में आना माना बट्टी में पकना, या और कुछ भी याद न आए। वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आज बाबा ने खास वरदान में ध्यान खिंचवाया है, एक दो की विशेषता देखो। अब गुणों पर ध्यान न जाए, विशेषताओं पर ध्यान जाए। तो आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। ऐसा कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं होगा जिसको कोई भी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि जो बाबा के बच्चे बनते हैं कुछ तो एक विशेषता होती है, लेकिन हो सकता है ज्ञान काल में पता न चले, लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं वो विशेषता उभरती है, है ना? तो बाबा कहते हैं कोई विशेष, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। कैसे प्राप्त है वो विशेष गुण? बाबा कहते हैं नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो, हर एक की विशेषता को देखो। कैसे? होली हंस बन करके, और फिर वर्णन करो, विशेषता देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए, अगर कोई में ऐसी कमजोरी है वो देखते हो सुनते हो तो क्या समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं, ये मेरी है, ये मेरी की कमजोरी है, इनकी नहीं। क्योंकि संगठन का जो लीडर होता है ना, वो सारी जिम्मेदारी पूरी उठाता है। ऐसे नहीं कि ये फलाना जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है। तुम लीडर हो, तुमको सब देखकर फॉलो करते हैं, तुम ही ठीक फॉलो नहीं करोगे तो कैसे तुम ही नहीं ठीक चलोगे तो कैसे तुमको फॉलो करेंगे। इसलिए लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बाबा कहते हैं, किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। एक बाप के, एक परिवार के, एक माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, कोई भूल की तो क्या कहेंगे, किसी को पता चल गई तो कहेंगे किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, है ना। तो जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हैं, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। किसको कहेंगे होली हंस? विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना, ये है होली हंस की निशानी। कंकड़ को फेंकना, हीरे को स्वीकार करना, नीर फेंकना, क्षीर लेना, तो ये है होली हंस की विशेषता। स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। कौन बनते सदा विजयी? जो समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्तियां, ये सब बचाना पड़ता है, बचाने वाले ही सदा विजयी है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो के अंतर्गत, जैसे मणकों की विशेषता होती है, माला में मणके होते हैं ना, तो उनकी क्या विशेषता होती है? एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक जैसे ही मणके होते हैं, एक ही साइज वो माला में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। कब माला में पिरोए जाएंगे बाबा के बच्चे? जब सभी एक मत, एक को ही, एक की ही लगन में एक रस स्थिति में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तभी माला में पिरोए जाएंगे। हाँ, तो इसमें एक मत हो, एक की लगन हो, एक रस स्थिति हो, तब बाबा कहते हैं माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें होती है तो वो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाएंगे। अगर मत में विरोधाभास है, एक मत नहीं है, तो फिर वो 16,000 की माला में आएंगे। तो इसीलिए देखो हमारी दादियां तो देख सब 8 की माला में आएंगे ना, तो इसीलिए 108 की माला में आने वाले सब एक मत थी। दादी और दीदी के लिए तो यही कहते थे, दीदी और दादी दो हंसों का जोड़ा है, दो शरीर है और एक आत्मा है, ऐसे कहते थे दादी दीदी के लिए। दीदी ने जो कहा दादी ने माना, दादी ने जो कहा दीदी ने माना, इतना आपस में प्यार था, तभी तो देखो 108 की माला में आए। तो बाबा कहते हैं अगर आपस में दो मतें होती हैं तो वो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, मत बदल गई, नहीं मानते, तो फिर 108 की माला में तो कभी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने यहाँ बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे। ओम शांति।